नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आरंभ की गई हिमकेयर योजना का मुद्दा आज एक बार फिर विधानसभा में गूंजा और सत्ता पक्ष व विपक्ष ने इस योजना को लेकर एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए। सदन में इस मुद्दे पर तकरार के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमकेयर हिमाचल में बहुत बड़ा घोटाला है और सरकार इसकी सीएजी से जांच करवा रही है। धर्मशाला के तपोवन में आयोजित प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक विनोद कुमार और त्रिलोक जम्वाल के संयुक्त सवाल के जवाब में दखल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना जिस उद्देश्य से शुरू की गई थी वो उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार इसकी जांच करवा रही है। इसमें महालेखाकार द्वारा ऑडिट भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिमकेयर योजना के तहत अभी तक निजी अस्पतालों का 211 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है, जबकि 110 करोड़ रुपए शेष है और कुल मिलाकर हिमकेयर के तहत 280 करोड़ रुपए का भुगतान करने को है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस राशि से रोबोट सर्जरी, एमआरआई और पैट स्कैन जैसी आधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत सिर्फ उतना ही इलाज रोगियों का करेगी जितना पैसा केंद्र से आएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार भविष्य में आयुष्मान योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से अब कोई पैसा खर्च नहीं करेगी और आयुष्मान भारत योजना पर प्रदेश सरकार की ओर से खर्च की जाने वाली राशि को हिमकेयर पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य को केंद्र से सिर्फ 43 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जबकि प्रदेश सरकार इस योजना पर 110 करोड़ रुपए तक खर्च कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना घोटालों के लिए नहीं बल्कि गरीबों की मदद के लिए है। उन्होंने कहा कि सरकार हिमकेयर योजना में हुए घोटाले को जनता की अदालत में ले जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना से किसी को भी वंचित नहीं रखा जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माना कि इस योजना के तहत भुगतान में कुछ समस्या जरूर आई है। हिमाचल की समृद्ध और प्राचीन देव संस्कृति को एक बार फिर जीवंत करती ऐतिहासिक शुरुआत आज शिमला जिला की जुब्बल तहसील के झड़ग गांव में हुई। 54 साल के लंबे अंतराल के बाद 3 दिवसीय शांत महायज्ञ का शुभारंभ पारंपरिक विधि विधान के साथ किया गया। महायज्ञ की शुरुआत गांव में नागेश्वर जी महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। इस धार्मिक अनुष्ठान में लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। झड़ग गांव पहुंचने पर देवताओं के देवलुओं का स्थानीय लोगों ने परंपरागत ढंग से भव्य स्वागत किया। नागेश्वर देवता के कारदार व अन्य लोगों ने बताया कि 54 साल बाद ये महायज्ञ बड़ी धूमधाम, मान सम्मान और आस्था के साथ आयोजित किया जा रहा है और इससे इलाके में सुख समृद्धि बनी रहती है।
पूरे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, 54 साल बाद हो रहा है। मैं पूरा जुब्बल कोट खाई जो एरिया है हमारे, इसमें बहुत बड़ा है, लोगों में और जनता में बहुत उत्साह है। बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली है कि हमारे होते हुए हमारे इतना सौभाग्य माता होकर आ गया। जैसे आपको पीछे पता ही है कोविड आया था तो हमारे महाराज का बहुत बड़ा हो रहा है। हमारा तो बड़ी सुख शांति थी यहाँ पर, इसी तरह आगे अभी देखो 25 में बड़ी आपदा आई तो हमारे इधर तो कोई भी नहीं, सारा बहुत बढ़िया रहा। ये सुख शांति के लिए ही हो रहा है। हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे को इस यज्ञ में मौका मिला है।
शिमला के सुन्नी क्षेत्र में सतलुज नदी में बढ़ते जलस्तर और गाद के मामले को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कहा कि सुन्नी क्षेत्र में कोल डैम प्रबंधन की ओर से सिल्ट के ऊपर सोनार सर्वेक्षण करवाया जा रहा है जो 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 दिनों में सर्वेक्षण कार्य पूरा होगा जिसके आधार पर सुन्नी क्षेत्र में भविष्य के लिए रणनीति बनाई जाएगी।
जब बारिश तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर पानी का जो वॉल्यूम होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उसमें जो बहाव होता है उसमें तो हमें कोई रिएक्शन का भी टाइम नहीं मिल पाता, तो वो सारा जो एक मसला बड़ा गंभीर मसला है। अगर एग्जिस्टेंस हम सबको अपना रखना है तो कहीं ना कहीं जो है हमें मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ती है कुछ चीजों में। हमारे लिए सबसे बड़ी है लोगों की लाइफ जो है फुली प्रोटेक्ट रहनी चाहिए, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी की खेती बाड़ी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी उसको जिस भी हाईएस्ट लेवल पे ले जाकर के बात करनी होगी, उसी के पैरामीटर की प्रिलिमिनरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।